آج صبح آپ کا خیر مقدم آج صبح صبح کے وقت کرتا ہوں, چاہے آپ نزدیک ہوں یا دور ہوں. ہمارے پاس یہ موقع ہے, یہ افسر ہے کہ ہم خدا کے کلام کو, اس کے وچن کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکتے ہیں. اور خدا کا کلام یعنی کہ وچن پورا ہوا اور خداوند کے راج کی, اس کی بادشاہت کی جو باتیں ہیں, سسماچار ہے, وہ سنی جا سکتی ہیں. میں یہاں پر وچن سے, کلام سے پڑھنا چاہوں گا پہلا یوحنا اور تیسرا باب اور اس کی دوسری آیت. پہلا یوحنا 3:2, پہلا یوحنا 3:2 سے میں پڑھ رہا ہوں. پہلا یوحنا 3:2, دیکھو ہے پریو, اب ہم خداوند کے فرزند ہیں, پرمیشور کی سنتان ہیں, اور ابھی تک یہ ہم پر ظاہر نہیں ہوا, پرگٹ نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے, پر ہم اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا, پرگٹ ہوگا, تو ہم اس کے سمان ہوں گے, اس کے جیسے ہوں گے, اور اس کو دیکھیں گے کہ جیسا کہ وہ ہے. اب سنیں, ہم آج اتنے سنگین وقت میں رہ رہے ہیں, اور جو بھی بائبل کے ایماندار وشواس کرنے والے لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اب ہم ایک ایسے وقت میں پہنچ چکے ہیں, آ چکے ہیں, جس کے بارے میں ڈینیل نبی نے کہا تھا, بھویشوانی کری تھی. جب اس کو یہ کہا گیا تھا کہ اس کتاب کو یعنی کہ اس کلام کو آخری وقت تک کے لیے سیل مہر بند کر دے, اور اتنا گیان, اتنی نالج بڑھ جائے گی, اور دیکھیے تب یہ جو سسماچار ہیں جیسے متی 24 اور مرکوس 13 اور لوکا 21, ان کلام کے اندر ہم پڑھتے ہیں ہمارے پربھو نے, ہمارے خداوند نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے آنے کا وقت کیسا ہوگا. ہم بہت سارے ڈیٹیلز میں تفصیل سے نہیں بات کر رہے, ڈیٹیل سے نہیں بات کر رہے, پر ہم جانتے ہیں کہ ہم اس سنسار میں, اس دنیا میں سبھی لوگ اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں کہ اب کچھ بھی ویسا ہی نہیں ہے جیسا کہ وہ پہلے جیسا اب نہیں ہے, اور پہلے جیسا اب نہیں ہوگا. پر اب یہ بائبل کی بھویشوانی, پروفیسی پوری ہو رہی ہے کہ لڑائیاں اور دکھ اور مصیبتیں اور آفتیں آئیں گی اور آ رہی ہیں, اور ہم نے اس کا نظارہ اس گزرتے ہوئے سال میں دیکھا. کہ یہ جو بیماری کرونا ہے, یہ اس دنیا کے سارے جہان میں, سارے ملکوں میں یہ پہنچ گیا, اور ہم جانتے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے, اور یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے کہ جو سارے دنیا کا جو کلائمیٹ, واتاورن ہے, خلا, وہ چینج ہو رہی ہے, اور سب کچھ بڑا بدل رہا ہے. اور جو ذمہ دار لوگ ہیں, وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں, سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں کہ اب کیا کریں. اور جیسے ہمارے خداوند نے کہا, جب تم ان सब बातों को होता हुआ देखो, होता हुआ देखो, तब अपने सिरों को ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि अब तुम्हारी नजात का वक्त बहुत करीब आ गया। यानी कि तुम शारीरिक रूप से, जिस्मानी रूप से भी तुम्हारे बदलने और तुम्हारे तुम्हारे उद्धार का काम अब पूरा होने वाला है बहुत जल्दी। और रोमियो 8 में जैसा लिखा है कि सारी की सारी कायनात, सारा का सारा जगत और संसार इस चीज के लिए लालायित है, और सारी की सारी जो जितने जितने बाग बगीचे और जंगल हैं, ये सब फर्क होते जा रहे हैं, ये पहले से बेहतर नहीं हो रहे, ये पहले से और बदतर होते जा रहे हैं, यानी कि पहले से और खराब होते जा रहे हैं। पर हमारे पास इस चीज की आगाही है और इस चीज का ईमान हमको दिया गया है कि खुदावंद अपने उस काम को, प्रभु अपने उस काम को पूरा जरूर करेगा, अपने काम को। और अब हम उसके सामने, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, मेरे भाई और बहनों, हर वक्त ये हमेशा से बार बार कहने की जरूरत है कि जब हमारा खुदावंद, जब वो अपने अपने खुदावंद अपने कलाम की बातों को पूरा करता है, तब कोई ना कोई अलौकिक यानी सुपरनेचुरल बात का होना जरूरी होता है। जिस तरीके से कि जिब्राइल फरिश्ता जकरिया के पास आया और उसके पास ये मैसेज लेकर आया, कलाम लेकर आया कि उसकी 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 वाइफ एलिजबेथ एक बेटा जनेगी और उसका नाम यहुन्ना दिया जाएगा, ये पहले से बताया गया, और 6 महीने के बाद, और गैब्रियल और वो वही जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आया जो कुंवारी थी, और उसको भी ये वादा दिया, ये प्रॉमिस दिया और कहा कि तेरे को सलामती हो, तेरी सलामती हो, और तेरी तूने खुदावंद की नजर में भलाई पाई है। हम देखते हैं कि जिस जब खुदावंद इस भविष्यवाणियों को और पेशन गोइयों को पूरा करता है, तो अलौकिक चीजें यानी के जो गैर मुमकिन चीजें हैं, वो दुनिया में वो खुदावंद करता है, पूरा करता है। और ईमान से लोग उस बात को एक्सेप्ट करते हैं और रिसीव करते हैं और पाते हैं। और पेंतिकोस के दिन पतरस ने नहीं, पतरस ने किसी कलीसिया की स्थापना नहीं करी, 120 लोग जो थे वो ऊपर के कमरे में मौजूद थे, और वहां पर बड़ी एक सनसनाती हुई हवा आसमान की तरफ से आई, और पाक रूह यानी कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जिस तरीके से योएल नबी ने भविष्यवाणी की थी के आखिरी के दिनों में के खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं अपने रूह को अपने लोगों पर प्रकट करूंगा, उलटूंगा। और पतरस ने इस बात की गवाही दी कि ये वाली जो पेशन गोई थी योएल की, वो अब पूरी हुई। ये पतरस ने इस बात की गवाही दी कि जो खुदावंद वाचा करता है, वादा करता है, वो पूरा करता है। कि खुदावंद के जितने वादे हैं वो उस उनके पूरे होने, उनके कामिल होने से उनका ताल्लुक है। वो खुदावंद के वादे अपने पूरे होने, उनके पूरे होने और कामिल होने से जुड़े हुए हैं। खुदावन सच्चा है और जो वो कहता है वो वैसा ही होता है, और इस चीज की हमारे पास गवाही है। और देखिए, जब उसने कायनात को बनाया, इस संसार की सृष्टि करी, इस जहान को बनाया, तो उसने जैसा कहा वैसा ही हो गया। हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं जिसमें के बाइबल की पेशन गोईयां और भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, इज़राइल पर पूरी हो रही हैं, जैसा कि खुदावन ने फरमाया, और जैसा कि यरूशलेम को भी हमने देखा कि यरूशलेम जो है वो अन्य जातियों के द्वारा, गैर कौमों के द्वारा रौंदा जाएगा जब तक के गैर कौमों का वक्त पूरा ना हो जाए। और उन 1948 से हम देख रहे हैं कि इज़राइल जो है ये एक मुल्क करार दे दिया गया, रिकॉग्नाइज कर दिया गया, इज़राइल को एक देश मान लिया गया, और तब से अब तक। और आज देखिए कि मिडिल ईस्ट के अंदर देखिए इज़राइल और काफी सारे अरेबियन देशों के बीच में, और हमने देखा और सुना भी कि पोप का अपॉइंटमेंट कर दिया गया है कि उसका एक मेन रोल इस जिम्मेदारी से कनेक्ट कर दिया गया है, पोप को इस जिम्मेदारी से चुन करके जोड़ दिया गया है, यानी इज़राइल और बाकी मुस्लिम देशों के साथ, अरेबिक वर्ल्ड के साथ मुतल्लिक जोड़ दिया गया है। क्योंकि एक बीच का बिचौलिया होना आदमी जरूरी है, जो कि इज़राइल और इन मुस्लिम देशों, अरब देशों के बीच में बिचौलिए का काम करे, मीडिएटर का काम करे, मध्यस्थता का काम करे। अब देखिए, एक सबसे बड़ी मस्जिद है, वहां पर मरियम आप देखिए, हम जानते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। जो देखिए आखिरी खबर आ रही है वो ये है कि अल अक्सा की जो मस्जिद है वो यरूशलेम में नहीं है। ये बात बताई जा रही है कि वो टेंपल माउंट पर नहीं है, अल अक्सा की मस्जिद वहां यरूशलेम में नहीं है, बल्कि वो तो मक्का से, जो अरेबिया में पाया जाता, वहां से 25 किलोमीटर दूर पर वो मस्जिद पाई जाती है, वो यरूशलेम में नहीं है। अब देखिए, ये वक्त आ गया है कि ये दुनिया के तीन बड़े बड़े जो धर्म है, यानी के यहूदियों का धर्म, इस्लाम और मसीहियत, ये तीन जो धार्मिक संस्थान हैं, ये जो तीन रिलीजन माने जाते हैं, ये अब्राहम के नाम में, अब्राहम की संधि के नाम में, अब्राहम की ट्रीटी के नाम में इनको जोड़ा जा रहा है। और हम जानते हैं कि बर्लिन में एक बिल्डिंग है, वहां पर एक बिल्डिंग बनाई जाएगी और 43 मिलियन यूरो से बनाई जाएगी, और एक जगह है उसके लिए चुन ली गई है। और देखिए, वहां पर तीन हिस्से बनाए जाएंगे, इस्लाम के लिए, जूडाइज्म के लिए और मसीहियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए। तीन अलग अलग मुकाम वहां बनाए जाएंगे और उसका मुखड़ा है और वहां पर उस बिल्डिंग का जो टाइटल है, एक मुखड़ा है, उसका नाम है कि वो एक ही जगह एक ही लोगों के लिए, तीन तफरकों के लिए, तीन धर्मों के लिए एक ही जगह की स्थापना की जा रही है, और उसका नाम भी दिया जा रहा है कि एकता का घर। और देखिए भाई और बहनों, आप सब जानते हैं कि हम अंत समय में नहीं हैं, बल्कि हम तो अंत के भी अंत समय में पहुंच गए हैं। देखिए 1933 से भाई ब्रैनम को, उनको ये दर्शन दिया गया, उनको ये रोया दिखाया गया कि क्या होने वाला है, और उनमें से एक ये था कि एक ऐसी कार आएगी जो कि अपने आप से चलेगी, और उस कार में टेबल सजी होगी, और लोग दोनों तरफ से आगे आमने सामने बैठे होंगे और वो कुछ गेम खेल रहे होंगे, कार्ड खेल रहे होंगे। और आज हम देख रहे हैं कि क्या है, आज देखिए लोग, आज हमारे देश में लोग वो एक पार्किंग एरिया के अंदर, जहां पर उनके पास एक ऐसी जगह है, वो वहां पर निकलते हैं और वहां जाके एक बटन दबाते हैं और वहां पर वो कार अपने आप चली जाती है पार्किंग के अंदर में। और जब वो वापस आते हैं तो वो एक जगह पर आकर एक बटन दबाते हैं और वही कार पार्किंग में से निकल के उनके पास आ जाती है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, सब कुछ देखिए हमारे सामने दिख रहा है। और भाई ब्रैनम ने बताया था, उनको दिखाई दिया था कि यूएसए में, हम सब जान रहे हैं कि अमेरिका में वो एक प्रोटेस्टेंट, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो वो प्रोटेस्टेंट कंट्री है, देश है, और जो दक्षिण अमेरिका है वो कैथोलिक कंट्री है। और भाई ब्रैनम ने देखा कि वहां पर एक राष्ट्रपति आएगा और एक औरत जो है वो उपराष्ट्रपति भी हो सकती है, और अंत में वो जो महिला है, वो जो औरत है, वो जो मोहतरमा है, वो राष्ट्रपति बन सकती है। और मेरे भाई और बहनों, ये देखिए सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे बताया गया। खुदावंद के प्रोग्राम के मुताबिक हम अपने वक्त को बर्बाद नहीं कर सकते। हमारे लिए ये तो इतना जरूरी है, ये जानना इतना जरूरी है कि खुदावंद ने सब कुछ, परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया, हमें दिखा दिया। और 11 जून 1933 को जब खुदावंद का बंदा, जब उनको उन्होंने ओहायो नदी के अंदर बपतिस्मा दे रहे थे, जब वो 17th यानी 17वें इंसान को बपतिस्मा दे रहे थे, तो ऊपर आकाश से, आसमान से एक बहुत तेज हवा की मानिंद हवा आई और वो लोगों को दिखाई दिया वो नजारा कि वो अलौकिक, वो सुपरनेचुरल आवाज ने कहा, उसने भाई ब्रैनम से कहा, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा गया था कि वो खुदावन यीशु की पहली आमद को तैयार के लिए की तैयारी करे, उसी तरीके से तुमको एक मैसेज दिया गया है, तुमको एक संदेश दिया गया है जो कि खुदावन की दूसरी आमद की तैयारी करेगा, यानी कि वो संदेश, वो मैसेज। अब हम देखिए इस साल के आखिर तक पहुंच चुके हैं और हम जानते हैं कि भाई ब्रैनम, जब वो उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया जो उनको दिया गया था, तो 24 दिसंबर को 1965 को खुदावन ने उन्हें बुला लिया, अपनी जलाल में बुला लिया, ग्लोरी में बुला लिया, अपने पास बुला लिया। पर खुदावन ने बाकी के बचे हुए काम के लिए पूरी जिम्मेदारी ली कि ये जो पाक कलाम है, पवित्र सुसमाचार है, इसमें कोई मिक्सिंग ना हो, इसका प्योर फॉर्म, इसका सिद्ध तरीका, इसका असली फॉर्म जो है, असली जो रूप है, उस रूप में ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, यानी कि ये पाक कलाम दुनिया के कोने कोने में प्योर और ओरिजिनल फॉर्म में पेश किया जाए, सारी दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जाए। और भाई ब्रैनम को बुलाहट थी इसके लिए, डायरेक्ट बुलाहट थी कि ये संदेश, ये कलाम, ये वचन जो है ये सारे संसार के अंदर पहुंचेगा। और मुझे ये कहना है, आज मैं पूरे सच्चे दिल से ये कह रहा हूं कि उसके फजल से, उसके अनुग्रह से उसने मुझे इस्तेमाल किया कि क्योंकि मैं भाई ब्रनम की मिनिस्ट्री से, उनकी सेवकाई से, उनकी खिदमत से पहले मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, मुझे मिलाया गया और बार बार, और मैंने इन चीजों का अनुभव किया और इन चीजों को मैंने देखा कि खुदावन ने किस तरीके से, परमेश्वर ने किस तरीके से, अलौकिक तरीके से और उन बहुत सारी गिफ्ट्स के द्वारा और बहुत सारे आश्चर्य कर्मों के द्वारा आप उनकी सेविकाई को प्रकट किया, उनकी उनकी मिनिस्ट्री को कन्फर्म किया। और देखिए 1946 से 1965 के बीच में कितने काम हुए हैं उन सभाओं में, उन मीटिंग्स में, भाई ब्रैनम की मीटिंग्स में। कई लोगों की बॉडीली, शारीरिक रूप से चंगाई हुई, जिनको कैंसर ने खा लिया था उनका कैंसर चला गया और हर तरीके की हीलिंग जो थी वो पूरी हुई। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने स्ट्रेचर को, जिस पर वो लेट कर आए थे, उनको अपने हाथों में ले लिया और मैं आंखों देखा हुआ और कानों से सुना हुआ गवाह हूं आपके सामने कि खुदावन ने हमारे वक्त में, हमारे समय में खुदावन ने क्या क्या किया। और अब देखिए, अब वो समय जबकि ब्रदर ब्रैनम को भाई खुदावन ने बुला लिया और तब उन्होंने एक दर्शन दिखाई दिया उससे पहले, और उन्होंने देखा था कि एक टेंट है, एक तंबू है, कि वो एक तंबू होगा, जिस तंबू के उनको नहीं पता था कि ये तंबू जो है, ये तंबू का जो दर्शन है, ये विजन है, ये जो रोया है जिसमें उनको तंबू दिखाई दिया, ये उनके जाने के बाद पूरा होगा। और खुदावन ने 19 जनवरी 1966 को खुदावन ने मुझे ये बातें दिखाई कि खुदावन ने अपने इन कामों की, इन बातों की रखवाली, देखभाल किस तरीके से करी। और उसने एक तंबू दिखाया जिसका कि कोई सिरा नहीं था, उसका कोई बाउंड्री नहीं थी, उसका कोई सिरा नहीं था, कोना नहीं था, वो तो एक तरीके का ऐसा तंबू था जिसका कोई छोर नहीं था। और देखिए कि खुदावन ने उसकी जिम्मेदारी खुद ली कि ये नहीं कि एक छोटा सा तंबू जो यूएसए में गाड़ दिया जाए या लगा दिया जाए, कहीं खड़ा हो जाए, ना, ऐसा नहीं कि जहां पर के जो नबी है वो जाकर के उस छोटे से तंबू में 40 दिन अपनी सेवकाई या मिनिस्ट्री करेगा, पर खुदावन ने वो सारी दुनिया को एक तंबू के रूप में, एक खैमे के रूप में, वो एक ऐसा खैमा, ऐसा तंबू है जो कि सारी दुनिया के छोर छोर तक, कोने कोने तक छाया हुआ है। और मैं दोबारा कह रहा हूं कि वो जो टेंट या खैमा या तंबू है वो इस तरीके से छाया हुआ है कि उसके जो कोने हैं, वो उसके जो कोने थे, उसके जो छोर थे, उसकी जो दीवारें थी, उसकी जो कनाते थी, वो बंद नहीं थी, वो खुली हुई थी, जिससे कि वहां पर भारी संख्या में, भारी भारी कायनात में, भारी नंबर्स में लोग आ सकें, कोई भी आ सकें। और उसके छोर खुले हुए थे, उसके दरवाजे बंद नहीं थे, वो ओपन खैमा था, वो तंबू ओपन था साइडों से। और अब देखिए वो वक्त आ गया, मुझे ये बताया गया कि तेरा वक्त आ गया है, और लोगों से कहे और बता कि खुदावंद यीशु मसीह के आने का वक्त बहुत ही करीब है, बहुत ही नजदीक है। और ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है, ये जो कलाम है, ये संसार में अब भेज दिया जाए और भेजा गया। और मैंने, प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले 55 सालों से मैं ये काम, ये खिदमत खुदावंद की हेल्प से, खुदावन की मदद से, उसके फजल से कर रहा हूँ। और मैंने जो मिशनरी जर्नी और यात्राएं करी, और मैं खुदावन का बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने ऐसा होने दिया, उसने मुझे इस तरीके से उठाया, इस तरीके से उसने मुझे समझाया, और मेरे सामने वो दरवाजा खोला गया जिससे कि मेरे सामने वो रास्ते खुल गए जिससे कि मैं जगह जगह पर जाऊं, और मेरे पर्सनल कांटेक्ट व्यक्तिगत संपर्क बन गए। और अब देखिए उसके बारे में सोचें कि खुदावन ने किस तरीके से, हर तरीके से खुद खुदावन ने जिम्मेदारी ली और खुद खुदावन ने वो चीजें मुहैया कराई और उनका उनका उनके लिए साधन बनाए कि जैसे कि पुराने भाई ब्रैनम के जो पुराने सरमन थे जो सन 60 से शुरू हो गए थे वो आज भी सारी दुनिया में सुने जा सकते हैं, ऑनलाइन सुने जा सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस में, बहुत सारी जुबानों में सुने जा सकते हैं, और लोग इन अलग अलग जुबानों में अलग अलग जगहों पर, मुकामों पर कनेक्ट हो सकते हैं ऑनलाइन। जो भी वक्त अब हमारे पास बचा है उस वक्त का हम, उस वक्त को हम खातिर जाने, उस वक्त को हम उसके बारे में सोचें और उसके ऊपर अपने मनों को लगाएं, क्योंकि प्रभु ने कहा है, जैसा कि भाई ब्रैनम ने भी कहा, और उनको इस चीज का मुकाशवा हुआ और प्रकाशन हुआ 3 दिसंबर 1962 को उनको ये मुकाशवा कंफर्म हुआ, जैसा कि लिखा है, जैसा कि अमोस नबी ने लिखा कि खुदावन जो है अपने कलाम के, यानी के वचन के सुनने के लिए एक फैमिन, यानी कि अकाल वाली स्थिति, अकाल वाली सिचुएशन पैदा करेगा। और बैंक्सवुड और सॉथमैन, ये जो खुदावन ने दिया और कहा, जो खुदावन ने दिया और कहा इसके लिए, और जो इस वक्त के लिए खुदावन की आमद के लिए को बता रहा है, हम उसके बड़े आभारी हैं, खुदावन के बड़े धन्यवादी हैं, आभारी हैं तहे दिल से कि उसने अपने हर काम को पूरा करने के लिए पूरी जिम्मेदारी ली है। और उस वक्त में जब भाई ब्रैनम यहां पर थे, और उसके बाद खुदावन ने और भी बाकी की जिम्मेदारी ली, और जैसा मैंने कहा, अपने तहे दिल से खुदावन के हाजिर नाजिर जानकर उसके सामने के भाई ब्रैनम ने कहा, और उन्होंने बड़ी ऊंची आवाज में कहा कि खुदावन का बड़ा शुक्र हो रहा है कि उसने इस जमाना में हमारे लिए उसने क्या क्या किया और क्या क्या वो कर रहा है और करेगा। और देखिए आज खुदावन क्या कर रहा है, इसके बारे में लोग ध्यान नहीं दे रहे, इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, इसके बारे में सोच नहीं रहे, इसके बारे में हमें सोचना है और देखना है। इस तरीके से वो है था, जिस तरीके से वो हमारे खुदावन के वक्त में था, लोग कहते थे हमारे पास मूसा है, हमारे पास नबी हैं, उनको पता है कि खुदावन ने क्या किया, क्या क्या किया और क्या क्या करने वाला है, और एलिया ने आना है, और एलिया आने वाला, उसकी पेशन गोई थी, भविष्यवाणी थी, और हर एक पेशक में एलिया के लिए एक अलग से कप रखा जाता था कि एलिया के वो कप ऑलरेडी, प्याला ऑलरेडी रखा हुआ है उस पेशाख में, जो खुदावन ने पहले किया, पास्ट में किया, वो आगे भी होगा, फ्यूचर में भी होगा, पर जो खुदावन आज वर्तमान में, प्रेजेंट में जो खुदावन कर रहा है वो उसको नहीं देख पा रहे, क्योंकि जो अंधे हैं वो अंधों को सिखा रहे हैं, और वो क्या सिखा पाएंगे, اور ہمارے خداوند نے کہا تھا کہ جو لوگ جو یوحنا سے بپتسمہ نہیں پائے ہوئے تھے اس وقت, انہوں نے خداوند کے اس حکم کو, خداوند کی اس آگیا کو ٹکرایا, اس کو نہیں مانا, اس کا انکار کیا, جنہوں نے کہ اس وقت یوحنا کی اس منسٹری کو انکار کیا, کیونکہ اس کو تو بھیجا گیا تھا خداوند کی راہ تیار کرنے کے لیے, خداوند کی پہلی آمد کی راہ تیار کرنے کے لیے. اور اگر ہم اپنے وقت میں آئیں, اپنے وقت میں آ کر یہ دیکھیں, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ان کے لیے جو جن کی عقل 1965 میں آ کر, جن کا گیان, ان کی سمجھ 1965 میں آ کر رک گئے, اور وہ سوچ رہے تھے کہ یہ نبی جو ہے بھائی برنم, یہ اپنی سیوکائی کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ سے آئے گا اور اپنی سیوکائی کو, خدمت کو پورا کرے گا. دیکھیے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی موسیٰ, کوئی جان دا بیپٹسٹ, کوئی بھی نبی اس طریقے سے ایک بار جانے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آیا. اس کے لیے کوئی وعدہ ہمیں نہیں دیا گیا. اور یہ ہم نے پڑھا کہ جب وہ, ہم نے پہلے یوحنا 3 میں پڑھا تھا کہ جب وہ پرگٹ ہوگا, یعنی کہ جب وہ ظاہر ہوگا ہمارے سامنے, جب وہ ہمارے سامنے پرگٹ ہوگا, اپیئر ہوگا, جب وہ ہمارے سامنے آئے گا, تب ہم اس کو, ہمارے سامنے جب وہ پرگٹ ہوگا, ظاہر ہوگا, تب ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیسا ہے. ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں بھائی اور بہنوں, کہ خداوند کا جو ہے, یعنی کہ بلاہٹ اور تیاری اور الگاؤ پیدا ہونا, سپریشن ہونا, اور یہ سب کچھ, پہلی اور آخری بارش کا ہونا, یہ سب ایک ساتھ ہے. یہ وہ وعدے ہیں جو ہمارے خداوند نے ہمارے لیے کیے ہیں, اور ان کا پورا ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ خداوند نے یہ واچا دی ہے, خداوند نے وعدے کیے ہیں, یہ پرومس کیے ہیں. اور ہم ایک بار پھر سے کہنا چاہتے ہیں, جب سے جیسے گانے والے نے گانا لکھا, مجھے بھی نہیں پتا کیونکہ تجھے پتا ہے کہ تیری, تو اپنی راہ اور اپنے سمے کو اور اپنے کاموں کو جانتا ہے پربھو, میں نہیں جانتا, پر تیری راہیں تو جانتا ہے. میری بھائی اور بہنوں, ہم ایک ایسے انت کے سمے میں رہ رہے ہیں جو کہ خداوند کے, یعنی کہ پربھو یسو کے آنے کا آخری زمانہ ہے, اور اس نے نبی بھیج دیا اس کے پہلے, جیسا کہ لکھا ہے, جیسے ملکائی میں لکھا, ان کی آخری آیتوں میں لکھا تھا کہ خدا, یعنی کہ پرمیشور ایک نبی کو بھیجے گا ایلیا کی سیوکائی میں, اور وہ اس سے پہلے کہ وہ بھیانک دن آ جاوے. اور آج وہ دن ہے, آج وہ دن ہے انوگرہ کی آخریت کا, آج وہ دن ہے, آج گریس کا آخری دن ہے, جس سے کہ جبکہ سب کچھ پورا ہو جائے گا, کمپلیٹ ہو جائے گا. اس لیے خداوند نے اس کی پوری ذمہ داری لی, اور آج باہر اس کنفیوژن میں سے, اس بابل کے کنفیوژن میں سے نکل کے آنا. اور مجھے بار بار یہ کہنا ہے کہ کلیسیاؤں میں, جو پربھو کی جندی کلیسیا ہے, ان کے اندر کوئی بھی ویکتیگت انواد نہیں پایا جاتا. اور بھائی لوگ جو اس باتوں کو پرچار کرتے ہیں کہ انوگرہ کا سمے پورا ہو چکا, گریس پیریڈ ختم ہو چکا, اور میمنا جو ہے اپنی انوگرہ کی گدی چھوڑ کر الگ ہو چکا, ایسا نہیں. اور وہ اتر کر آ گیا, انوگرہ کی سیٹ چھوڑ کر کے آ گیا اور لوگوں کے پاس آ گیا. اس پرکار کی شکشا میں نہ جائیں. آپ پرکاشت واک مکاشوا 5 کو, 5, 6, 7, 8, 9, 10 کو پڑھیں, اور اس طریقے کے امیجنیشن, اس طریقے کی غلط تعلیموں میں نہ پھنس جائیں. کہ क्योंकि मेमना जो था वो सिंहासन के ऊपर नहीं था, वो तो उस सिंहासन के ऊपर उसके उस थ्रोन के सामने था, और वो जो मर्सी सीट है वो तो वहां पर है जहां पर के जो पाक तरीन जगह है, होलीएस्ट ऑफ होली है, जहां पर के अहद का संदूक रखा गया था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, खुदावंद के कलाम को पढ़ें, उसके पाक कलाम को पढ़ें, उसकी इज्जत करें और गलत बातों गलत बयानी बंद कर दें। और ये जो गलत शिक्षक हैं, गलत तालीम देने वाले जो लोग हैं, ये भाई ब्रनम की तरफ उंगली उठा के बताते हैं कि उन्होंने कहा नबी ने कहा, पर ये उनकी अपनी गलत तालीमें हैं। और यही सात गर्जन के बारे में भी बोला जाता है, सेवन थंडर्स के बारे में भी ऐसा ही बोला जाता है कि इस साल के आखिर में जब सारे भाई लोग जा रहे सेवा करने वाले जो भाई लोग हैं सारी दुनिया में, और जब वो सोचते हैं कि शायद सात गर्जन कोई बहुत बहुत खास चीजें थी, क्योंकि ये गर्जने तो उस वक्त सुनाई दी थी 28 फरवरी 1963 को, जब वो उनको ये सेवकाई की आज्ञा मिली, तब उस वक्त ये सात गर्जन की आवाजें हुई, जब वो की सात मोहरें खोली गई। इसीलिए उन सात गर्जनों के बारे में जो कि उस वक्त सुनाई दी ब्रदर बैनम को, तो वो क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंट थी, जबकि सात मोहरें खुल रही थीं। और जब खुदावंद उतरेगा और तब वो अपना दायना उठा के कहेगा, उस समय वक्त नहीं होगा, आज नहीं, ये कल नहीं, ये आगे फ्यूचर में, ये भविष्य में, ये फ्यूचर में ये बात होने वाली है। और उस वक्त ये सात गर्जन की आवाजों का जो मतलब है, इनका जो मकसद है, ये उस वक्त खुलेगा। और जब छह थुरियां फूकी जाएंगी, अब उसके बाद ये पेशनगोई हुई, जब ये उसके बाद ये पुकार हुई, ये अनाउंसमेंट हुई कि जब वो सातवां दूत, यानी के सातवां तुरही फूकने वाला दूत, तुरही फूकने वाला मैसेंजर, जब तुरही फूकेगा, ये नहीं कि कलीसिया का मैसेंजर, नहीं, कलीसिया का मैसेंजर नहीं, बल्कि तुरही फूकने वाला मैसेंजर जब तुरही फूकने पर होगा, तब वो सात गर्जन के शब्द जो हैं, तब वो बातें खुलेंगी, तब उसका मतलब समझ आएगा। ये सारी बातें रैप्चर के बाद होंगी। इसके लिए हम डैनियल उसकी 12वीं आयत और 12वें बाब और 7वीं आयत को हम पढ़ सकते हैं। और तब वो जो एंजल है वो एक बार, दो बार और आधी बार उस खुली हुई किताब को लेकर अपियर होगा। और मैं किस प्रकार से बताऊं, कैसे बताऊं कि खुदावंद का कलाम किस प्रकार से हमारे हमारे पास, हमको आज खुदावंद के कलाम में वापस आना है। जैसा कि हमने सुना इस कलाम में, जब हमने शुरू करी आज की मीटिंग, जब वो प्रकट होगा 1 यूहन्ना 3 में, जब वो अपियर होगा, जब हमारे सामने अपियर होगा, प्रकट होगा, अपने सिरों को उठाएं, जब प्रभु आएगा, जब खुदावंद आएगा, और ये बार बार पढ़ा जाएगा, मैं कहूंगा हमारा वक्त बहुत गुजर चुका है। मैं ये कहना चाहता हूं, 1 थिस्सलुनीकियों और 4 अध्याय में 4 बाब में पहला वहां लिखा हुआ है, 4 बाब में, 1 थिस्सलुनीकियों 4 बाब में, کہ خداوند یسوع مسیح خود, یعنی کہ خود, یہ تو یہ ہے, خداوند یوں فرماتا ہے, یہ ایسی سچائی ہے, اور ہم بھی آپ سے کہہ رہے ہیں خداوند یوں فرماتا ہے اپنے کلام میں, پہلا تسلونیکی چار میں, اور اس کے بعد وہاں بتایا جاتا ہے خداوند خود آسمان سے اترے گا اور اونچی آواز کے ساتھ اترے گا اور فرشتے کی اونچی آواز کے ساتھ آئے گا اور ترہی پھونکی جائے گی اور جو مسیح میں سوئے تھے وہ پہلے ان کو آواز, وہ اس آواز پہلے اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے, اور تب ہم جو اس وقت زندہ بچیں گے ہم جسمانی طور پہ بدل جائیں گے اور تب ہم ایک ساتھ خداوند کے ساتھ بادلوں میں ملیں گے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اے میرے خداوند تیرا کلام اتنا سچا ہے, تیرا کلام اتنا صاف ستھرا ہے, تیرا کلام تو اتنا صاف ظاہر ہے, اور پھر بھی آج دیکھ خداوند, ہم دیکھ رہے ہیں خداوند, جانتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی غلط شکشائیں اور کتنی غلط تعلیمیں اس بات کو لے کر پرچار کی جا رہی ہیں, کتنے سارے غلط تعلیمیں دینے والے لوگ ہیں جو لوگوں کو ورگلا رہے ہیں اور دھوکوں میں رکھ رہے ہیں. لکھا ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا, اپیئر ہوگا, پرگٹ ہوگا, یہ خدا کا کلام ہے, یہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے, کوئی پڑھے جانے کی بات نہیں ہے, یا پرچار کیے جانے کی بات نہیں ہے. وہاں لکھا ہے جب وہ اپیئر ہوگا, جب وہ پرگٹ ہوگا, یعنی کہ وہ ظاہر ہوگا اور دکھائی دے گا, یہ بالکل ہوگا, یہ حقیقت میں ہوگا, اور بڑی اونچی آواز کے ساتھ اور اس مقرر فرشتے کی آواز کے ساتھ اور ترہی جو پھونکی جائے گی. یہ 1963 میں نہیں ہو گیا یہ سب کچھ جیسا بتایا جا رہا ہے, اور ایسا نہیں کہ یہ اس سال میں ہو گیا, نہیں, یہ ہوگا اور بالکل اپنے مقرر وقت پر, جیسا لکھا ہے, جس طریقے سے لکھا گیا اس طریقے سے وہ ظاہر ہوگا اور اپیئر ہوگا. اور جو سیوکائی اور جو بلاہٹ بلائی گئی, جس کے دوارا ہمیں بلایا گیا, ہم اس کے ذریعے سے اس بات کو کہہ سکتے ہیں جو خداوند نے اپنے کلام میں کہہ دیا ہے وہ پورا ہوگا. اور آپ سب کو بہت ساری آشیش ملے. ہمیں آج اپنی پرستھتیوں اور اپنی سچویشن کو نہیں دیکھنا ہے, ہمیں ان باتوں کو اپنے دل سے لگانا ہے جو کہ دوسرے تھسلونیکیوں 5 میں لکھا ہے, پہلے تھسلونیکیوں 5 میں لکھا ہے کہ ہر بات میں خداوند کا شکر کرو اور ہر چیز اس کی مرضی کے حساب سے, اور خداوند یسوع مسیح میں دھنیواد کرتے رہو, شکر گزاری کرتے رہو کہ میرے لیے تو یہ اسمبھو ہے, غیر ممکن ہے, جے کہ کتنی ساری میٹنگز مارچ سے لے کر اور اب تک کوئی بھی لارڈ سپر نہیں ہوا, کوئی گیدرنگ نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. جس طریقے سے ہم نے کہا, خدا نے, پرمیشور نے, خداوند نے خود اپنے ہر ایک پروگرام کی ذمہ داری لی, اور سارے جو سیوکائی کرنے والے خدمتگار بھائی ہیں وہ ساری دنیا میں جو ہیں, ان کو یہ خداوند کی یہ یوجنا, یہ پلان سمجھ میں آ گیا سارے بھائیوں کو پاکرو کی ہدایت سے, اور خداوند اس کام کو ضرور پورا کر رہا ہے اور کرے گا جس کے لیے اس نے اپنے کلام کو بھیجا. اور میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں لکھا ہے, جو کلام میں لکھا ہے, جو وچن میں لکھا ہے, جو کہ ہم پرچار کرتے ہیں, جو کہ ہونے والا ہے, جب یہ ہوگا تب وہ ایک اصلیت ہے. آگے کسی کو پھر پیشن گوئی کرنے کی, سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ تو چشمدید دکھائی دے جائے گا جیسا ہم نے کلام میں سے پڑھا. اور جب خداوند کا آنا ہوگا, آج ہم اس چیز کا اندر سے, آج ہمارے اندر وہ بدلاؤ ہو رہا ہے, اور اس وقت ہم جو باہر کا ہمارا بدلاؤ ہے وہ اس سمے اس کے انوگرہ سے ہوگا, اور ہم اس کے جیسے ہو جائیں گے جیسا کہ وہ ہے. ہم وہ ہمارے لیے ایک جسم بن کر آیا, और उसने उद्धार का काम हमारे लिए पूरा कर दिया और उस उद्धार के काम का हमारा जो पुनरुत्थान होगा, हमारा जो जी उठना होगा, वो जैसे कि उसका जी उठना था उसी प्रकार से उसी जिस्म का हमारे को भी मिल जाना होगा। खुदावंद आपको हर हालात में, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर जुबान में, हर देश में आपको आशीष दे और उसका फजल आपके साथ हो। उसके नाम में हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन।
To illuminate my way, be merciful to me, O Lord. Pull away the veil before me,
so that I can see what you have done for me. Show me where I would be today. Show me that you received me. Remember, we are just people, forgetful and weak. Be merciful to us and watch over us. Nothing good I did. Jesus just received me. I'm not worthy of his love. It was my sin and my guilt which he bore. Yes, he loves me. I cannot understand it. Pull away the veil before me so that I can see what you have done. Show me where I would be today. Show me that you received me. Remember, we are just people, forgetful and weak. Be merciful to us and watch over us. Looking up to you, I may be confident now, for you revealed your word unto me. Veil me in your spirit and keep me always faithful, for you love me. You love me, my Lord. Pull away the veil before me that I can see what you have done. Show me where I would be today. Show me that you received me. Remember, we are just people, forgetful and weak. Be merciful to us and watch over us.